ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाबा बाप कितना निरअहंकारी है। बाबा पुराने तन में आते हैं, पति दुनिया में आते हैं और फिर बाबा आकर के बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। सासर बाबा ने कहा कि ड्रामा के अंदर भी एक पार्ट फिक्स है कि बाबा को पति दुनिया में आना है और पतित शरीर में आना है। बाबा ने ये कहा कि फिर तुम बच्चे क्या करते हो कि बाबा विश्व का मालिक बनाता है तो उसका रिटर्न क्या देते हो, क्या देते हैं रिटर्न? बाबा ने कहा यहाँ तो क्या देंगे रिटर्न, भविष्य में जाकर के, द्वापर में जाकर के मेरे को क्या करते हो, सोने के मंदिर में बिठा देते। यहाँ मैं पावन बनाता हूँ, विश्व की राजाई देता हूँ और तुम बच्चे रिटर्न में मेरे को द्वापर में आकर के सोने के मंदिर में बिठा देते हो। फिर बाबा ने कहा देखो ये ज्ञान कौन लेंगे, गरीब ही लेंगे, अमीरों को तो ये ज्ञान लेना ही नहीं है, वो तो समझते हैं बहुत है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, महल है, सब कुछ है, तो वो नहीं लेंगे। लेकिन ज्ञान जो लेते गरीब लेते हैं और गरीब ही जा करके साहूकार बनते। आज के जो साहूकार हैं वो भी आप देखते क्या हालत है, आज साहूकार है कल को कोई ऐसी घटना घटती है फिर एकदम गरीब कंगाल बन जाते हैं। तो भी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 15 जनवरी 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठी बच्ची बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। मीठी बच्ची बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब तुम स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज का प्रश्न है इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता है? इसका उत्तर है हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये है ड्रामा का प्लान बना हुआ। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। कितना भी कहो लेकिन बाबा को तो आना ही है और बच्चों को पावन बनाना ही है, तो बाबा कहते इस बंधन से बाप भी छूट नहीं सकता है। दूसरी प्रश्न है पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? बाबा आते हैं पढ़ाते हैं लेकिन बाबा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर है वह बहुत निराकारी बन, वह बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को तन भी ऐसा मिला है, पतित मिला है, क्यों है? तो बाबा कहते कितने निरअहंकारी हैं, वह बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते। उस समय ये तो याद ही नहीं रहेगा कि बाबा ने हमको ये दिया इसलिए हम बना रहे हैं, लेकिन भक्ति भावना से करते ना। तो बाबा कहते हैं फिर तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज का गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दुनिया दो है। जब पाप की दुनिया कहते हैं तो जो सुख की दुनिया भी होगी, दुनिया दो है, एक है पाप की दुनिया, एक है पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया में नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में तो दुख ही होता है। पुराना मकान होगा, कहीं टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा, कहीं पानी आ रहा है, कहीं पर उसका सीमेंट होता रहा है, क्या क्या होता रहता है, तो हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। पुराने को कितना भी ठीक करो, रेनोवेट करो, फिर भी वैसा ही रहेगा ना, पुराना तो पुराना ही है। तो बाबा कहते हैं पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि हो गए। कितना भी समझाओ हाँ हाँ करते, फिर ठीक है ठीक है, फिर वही बात करते हैं। तो बाबा कहते रावण राज्य होने के कारण पत्थर बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हो परंतु जानते कोई भी नहीं। भगवान है हमारा, बाप है, परमात्मा है, पुकारते रहते लेकिन है कौन, कब मिलेगा। बाबा कहते कुछ नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हो परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के नहीं रहे। परमात्मा को कहते तो मात पिता बालक तेरे, अरे मात पिता तो जानना चाहिए। तो बाबा कहते अगर भगवान को नहीं जानते तो किस काम के रहे, अगर भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है। कौन सा वंडर है, पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, परंतु ये जानते नहीं कि कौन है कब आएगा। परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचयिता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। सर्वव्यापी कहा, फिर कच्छ मच्छ छिक्कर भीतर सब में कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। ये तो परमात्मा की ग्लानी करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। चलो कुछ कहा कि इतने अवतार लेते लेकिन कच्छ मच्छ क्या क्या बता दिए। तो बाबा कहते देखो कितनी ग्लानी करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवानों वाच्य हैं, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं आता। आज बाबा ने एक राज और बताया, हमेशा बाबा कहते जब मेरी ग्लानी करते तब मैं आता हूँ, तो आज बाबा बता रहे हैं कि जब मेरी और देवताओं के लिए भी तो कितनी ग्लानी करते ना, तो बाबा कहते तब मैं आता हूँ। जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बच्चे भी कहते हैं और बाबा भी कहते हैं, बच्चों को भी आना है और बाबा को भी आना है। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कई बार कई बच्चे कहते ना, हम ज्ञान में देरी से क्यों आए, बाबा ने ऐसा क्यों किया, बाबा को चाहिए था हम पहले आते। बाबा कहते ड्रामा में ऐसा ही था, अब जो देरी से आए वो भी ड्रामा में पक्का था, और बाबा के टाइम आए थे वो भी ड्रामा में था, और बाबा को जब आना है वो भी ड्रामा में है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार बच्ची कहती हैं, इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। अभी कई कहेंगे ना, ड्रामा से क्यों ऐसा बना, हमारे को ऐसा पार्ट नहीं मिलना चाहिए था। बाबा कहते, जो पार्ट मिला ड्रामा के अनुसार मिला, मैं भी नहीं छूट सकता, तुम भी नहीं छूट सकते, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता, मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ा नई दुनिया में कौन ले जाएगा। बाबा कहते, मुझे क्यों आना पड़ता है नई दुनिया स्थापन करने के लिए, नहीं तो फिर कौन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक कोई भी बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर पड़ते हैं, तो कितना दुख होता है। शुरू में पहले सुनाते थे, जो बहुत अमीर लोग होते थे वो कहते, बहुत स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, और अभी जिनके वह बहुत धन संपत्ति है, सोचते स्वर्ग में, लेकिन दुख क्या आता, कोई मर गया, घर में बीमारी आ गई, कुछ न कुछ कारण हो गया, दुखी तो हो जाते ना। तो बाबा कहती हैं, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर पड़ते हैं, तो कितना दुख होता है। उनको ये पता ही नहीं है कि सतयुग में कभी अकाल्य मृत्यु होती नहीं, दुख की बात ही नहीं है, वहाँ आयु भी बड़ी ही रहती है, यहाँ तो अचानक मर पड़ते हैं। अभी देखो ना क्या हाल होता है, रोज न्यूज सुनते ही रहते, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ अर्थक्वेक हुआ, कहाँ आग लगी, पता ही नहीं पड़ता, अचानक शरीर छोड़ देते ना। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ क्या होता है ये भी कोई नहीं जानता। वो भी सतयुग को ऐसे ही बना देते, जो कलयुग में होता है वो बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते वहाँ पर क्या होता है ये भी नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं, कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इनों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं, हम किस लिए आए हैं, आप बताओ किस लिए आए, क्या बनना है। बाबा पूछते हैं सब बच्चों से, बाबा पूछते थे कौन बनेगा, क्या बनेंगे, तो बाबा को कहते थे हम, बाबा हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा, सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। बाबा ने एक बार राज बताया था, कई बच्चे कहते बाबा महाराजा महारानी तो एक बनेगा, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बनना, ये भी तो महाराजा और महारानी जैसा ही होता है ना, क्योंकि उसी फैमिली में रहना, रॉयल फैमिली में रहना, ये भी पद कोई कम नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम एन ऑब्जेक्ट सामने है, नरसिंह नारायण बनना है ना, ये है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते, यहाँ बाबा सुनाते हैं, फिर उसकी यादगार में द्वापुर से ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सचमुच बाबा कहते देखो, कथा तो सुनते रहते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। सचमुच कोई नरसिंह नारायण तो बनता नहीं है, कितने टाइम से ये कथा सुनते चले आए, लेकिन बाबा कहते कोई बना, कोई बनता ही नहीं है। सचमुच कोई नरसिंह नारायण तो बनता थोड़ी है, तुम तो सचमुच नरसिंह नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं कि आपका संस्था का क्या उद्देश्य, आते हैं ना बाहर वाले भी पूछते हैं, पहले भी पूछते थे। तो बाबा कहते कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो क्या बताना है, तो बाबा कहते हैं, कोई कोई पूछते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, बोलो नरसिंह नारायण बनना ये है हमारा उद्देश्य। परंतु ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है, माँ बाप और बच्चे बैठे। बाबा के टाइम पर कई आते थे मिलने के लिए, वो कहते थे कि हमें आपके गुरु से मिलना, तो बाबा क्या कहते थे उनको, बोल दो यहाँ कोई गुरु ही नहीं है। फिर कहेंगे अच्छा आपका जो संस्था का हेड है उससे मिलना है, तो बाबा कहते थे उनको, बोल दो ये संस्था ही नहीं है और इसका हेड भी कोई नहीं है। फिर कहेंगे नहीं हमको एक बार दर्शन तो करा दो, एक बार दर्शन तो करा दो। बाबा नहीं मिलते थे, बाबा कहते थे उनको पहले ज्ञान सुनाओ, उनको समझाओ, उनको पता रहे कि ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, हम बाप हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, परिवार है। तो बाबा ये हमेशा पक्का कराते थे, संस्था नहीं, अभी करके कई शब्द बोलते रहते हैं लेकिन वास्तव में बाबा हमेशा कहते थे ये तुम्हारा परिवार है। तो आज बाबा बता रहे हैं ये तो परिवार है, माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, हे माता पिता जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते, उसमें कहते ना तेरी कृपा से सुख घनेरे। बाबा कहते घनेरे कब मिलते हैं, जब बाबा आते तब मिलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, हे माता पिता जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के, विश्व का मालिक भी बनते हैं लेकिन किसका, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया हे भगवान आओ आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। पुकारते रहे चिल्लाते रहे आओ, तो बाबा आकर के कितना सुख देते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना हे भगवान आओ आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे, ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए, एक जन्म नहीं सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बहुत बड़ी रहती है और यहाँ पर भोगी है, देखो तो कैसे कैसे मरते ही रहते हैं, यहाँ पर भोगी हैं, अचानक मरते रहते हैं, वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ है, आयु भी 150 वर्ष रहती है, अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, वहाँ उनको पता पड़ जाता है टाइम हो गया है अब ये शरीर छोड़ना है, कोई दुख की फीलिंग नहीं है कि शरीर क्यों छोड़े, यहाँ तो शरीर छोड़ने के टाइम भी दुख, ना छोड़ने के टाइम भी दुख, चारों तरफ दुख ही दुख है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ है, आयु भी 150 वर्ष रहती है, अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो ये नॉलेज बाप ही बैठ कर समझाते हैं। भगत भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना तीर्थ आदि करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं, भक्ति देखनी हो तो क्या करते, कुंभ के मेले में जाओ तो क्या हाल है, चारों तरफ भक्ति भक्ति क्या क्या करते रहते हैं। बाबा कहते कुछ भी कर लो लेकिन इससे मेरे को मिल भी नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा, तुम तो कहते हो ना हे अंधों की लाठी प्रभु आओ हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो, बाबा को पुकारा, अंडों की लाठी कहा, तो वो आएगा तब तो रास्ता बताएगा ना। तुम तो कहती हो ही अंडों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो, तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं, बाप कभी दुख नहीं देते। बाबा कितना पक्का करा रहे हैं, बाप कभी दुख नहीं देते हैं। ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते, क्या क्या बोलते हैं, कभी दुखी होंगे, कहेंगे भगवान ने हमको क्यों इतना दुख दिया, किसी का बच्चा मर गया तो चिल्लाते हैं, भगवान को गाली देते हैं। तो बाबा कहते मैं थोड़ी ऐसे काम करता हूँ। तो बाबा के ऊपर कितने झूठे इल्जाम लगाए, ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ, मैं तो जीए दान देने वाला, मैं थोड़ी मारूंगा। बाप कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हरेक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाल मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं है। मैं तो तुमको सुख धाम में ले जाता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े होने चाहिए किस बात के लिए कि बाबा हमको सुखधाम का मालिक बना देते हैं, वहाँ कोई भी दुख नहीं है। तो बच्चों के रोमांच खड़े होने जाने चाहिए, ओहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे। कितना खुशी में कोई किसी को कुछ मिल जाता तो क्या बोलते हैं, तो बच्चे क्या कहते, ओहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने पुरुषोत्तम मास आदि बनाए, पुरुषोत्तम मास आता है, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत दान करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, उनको ये पता ही नहीं है। तो बाबा भी यहाँ पर क्या सिखाते हैं, पुरुषोत्तम मास में क्या करना है, पुरुषार्थ भी करो, पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषार्थ भी करो और ज्ञान दान भी करो। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबसे ऊंच ते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है। बाबा ने उस दिन भी कहा ना, इनको कोई गाली नहीं देते, बाकी भगवान को भी गाली देते हैं, कृष्ण को भी देते हैं, तो ऊंच से ऊंच है लक्ष्मी नारायण। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, चढ़ती गला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको समझाना बहुत सहज है, क्योंकि उसमें दिखाते ना कैसे ऊपर ऊंच स्थिति में धीरे धीरे एक एक कला कम होती है, लास्ट में आकर एकदम नीचे गिर जाते, फिर बाबा आकर के एकदम लिफ्ट की तरह ऊपर ले जाते हैं। तो बाबा कहते सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो, अब ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं किस लिए, भक्ति का फल देने। बाप ने सत्युग में फल दिया था, बाबा देते सत्युग का फल, और फिर बच्चे क्या करते हैं, भक्ति में उसका रिटर्न करते हैं। तो बाबा कहते बाप ने सत्युग में फल दिया था, बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं है, फिर क्या करते वो लोग, ये प्लान करते, ये करेंगे वो करेंगे। तो बाबा कहते देखो अभी प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं है। वह समझते हैं हम ये करेंगे, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी नहीं होता। बेचारे प्लान करते हैं, करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और अनाज हो भी जाता है, लेकिन अचानक बारिश आ गई, अर्थक्वेक हो गया, अचानक ओले पड़ जाते, जो बना बनाया है सारा ही खराब हो जाता है। तो बाबा कहते देखो फिर भी कुछ होता नहीं है, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल क्लेमिटीज का भी कोई क्या कर सके, प्लान बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ हाथ में आया और नेचुरल क्लेमिटीज ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो बाबा कहते नेचुरल क्लेमिटीज को भी कोई क्या कर सकेंगे, फेमिन पड़ेगा, अर्थक्वेक होंगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। बाबा ने ये सब कुछ पहले ही बता दिया था, उस समय कोई भी कहते थे ना तो सुनते ही नहीं थे, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो देख रहे हैं, अभी तो कहते हैं जो क्या क्या हो रहा है, परेशान भी हो रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं फेमिन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी, ये वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा ले लो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण शराब देती है और वो नरक का वर्षा देते। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, माया रावण नरक का वर्षा देती है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं ही शिवालय स्थापन करता हूँ, ये भारत ही शिवालय था, अभी वैशाली है, विश्व सागर में गोता खाते रहते हैं। अपने अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाबा कितनी ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो ये खुशी रहनी चाहिए ना, हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बना दूं, किस किस बात की खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, दूसरा भारत को स्वर्ग बना रहे, स्वर्ग का मालिक बना रहे, बेहद का भगवान हमको पढ़ा रहे, दुनिया पुकारती और बाबा हमको बैठ के पढ़ाते, तो कितनी बड़ी हमारे भाग्य की बात है। तो बाबा कहते हैं हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते हैं, हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है ना। बाबा कहते आपकी बिरादरी जो है वो सबसे बड़ी से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कौन सा कौन सी बिरादरी थी ये भी समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी है पहला नंबर, फिर सेकंड नंबर में है चंद्रवंशी बिरादरी, मीन्स ये बिरादरी समझते ना, सो वो जो उनका कुटुंब होता है, तो इसलिए पहली है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, फिर दूसरा है चंद्रवंशी बिरादरी, और फिर उसके बाद है इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। बाबा कहते बाबा ही आके समझाते ना, ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां, गांव गांव में जाओ हर 2 किलोमीटर पर दूसरी बिरादरी, हर 2 किलोमीटर पर दूसरा समाज, उनकी भाषा भी अलग, उनका रहन सहन सब कुछ अलग है। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां, ताल तालियां कितनी हैं, ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते, समझाते हैं अच्छी तरह से समझाते ना, ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते, ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। बाबा की कि पढ़ाई तो रोज पढ़े नहीं, तभी तभी तो बुद्धि में बैठेगा, अगर रोज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो बाबा कहते ना, हम तो दादियों को देखते थे, वो रोज मुरली पढ़ेंगे, उसको दो तीन बार पढ़ेंगे, उसको रिपीट करेंगे। तो बाबा भी कहते हैं ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान वाचे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। 25 राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन जाते। 25 राजा कैसे बन, धन दान किया पिछले जन्म में, फिर आकर के राजा रानी बन गए। लेकिन तुम बच्चे कैसे बनते हो, पढ़ाई से और योग से। तो बाबा कहते हैं 25 राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। ये बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी बहुत सहज होता है। बाबा के टाइम पर ये सब ड्रामा बायोस्कोप निकला था। पहले पहले जो फिल्म निकली तो ब्लैक एंड व्हाइट थी और उसमें कोई भी आवाज नहीं था, बिल्कुल मूवी होती थी। धीरे धीरे उसमें टॉकी किया तो बाबा की थी, ये सब जो निकला है उससे कोई उसी के आधार से बाबा भी बच्चों को पक्का कराते हैं ये भी ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है। ये बायोस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते, पहले जमाने में ड्रामा ही होते थे, फिल्म कम होती थी, कहाँ कहाँ जाके ड्रामा करते थे। मनुष्यों को तो बहुत शौक हो गया है, वह सब है हद के और ये है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है, मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है। इतना साइंस के द्वारा साधन मिल रहे हैं, घर बैठे सब प्रकार के सुख हैं, वो समझते अभी तो स्वर्ग है। एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ तो कितना दुख है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी, तो कितना ऑपोजिशन है। अभी तो देखो कितने मंजिल, 100 मंजिल बना देंगे, 80 मंजिल बना देंगे, और सतयुग में तो कोई भी मंजिल नहीं होती, ग्राउंड लेवल पर महल होते हैं। अभी तो छोटे 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 फ्लैट बना देते हैं, कितनी मंजिल खड़ा कर देते हैं। तो सतयुग में तो बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, पैलेस में कोई भी मंजिल नहीं होती है, वहां पर खुला ही होता है। तो बाबा बता रहे हैं आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी, तो कितना ओपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती, कौन सा स्वर्ग दिखाती है, कई प्रकार की चीजें बनाते रहते हैं। ये सब है माया का पंप, इनका फॉल होना ही है। कितना भी कुछ कर लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं और गिरती कैसी है, जैसे कि ताश के पत्तों के समान। तो बाबा ने कहा इनका फॉल होना ही है। कितनी जबरदस्त माया है, उनको तुमको तो उनसे मुंह मोड़ना है। माया इतनी जबरदस्त है तो बाबा कहते हैं तुमको तो उनसे अपना मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बिचारे नरक में हैं। तो अब नरक वासियों को स्वर्ग वासी बनाना है, गरीब ही वर्षा लेंगे। बाबा के पास जितने गरीब आते थे ना, बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते यही सच्चे बच्चे हैं, यही बाबा को पहचानेंगे, यही जाकर के स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते गरीब को ही वर्षा लेना है। साहूकार तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग नरक यहाँ ही है। अब इन बातों को तुम ही समझते हो, भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी तो कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते, खुदाई करते रहते हैं, कहां से कुछ निकलता है, कहाँ से कुछ निकलेगा, कहाँ से मंदिर मिलेगा, इतने साल पुराना है, कहाँ से कोई चीजें मिल जाती। पहले जमाने में तो ये सब खुदाई करते ही नहीं थे, और आजकल कहाँ कहाँ खुदाई करते हैं तो क्या क्या निकलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं अभी तो कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते, कहते इतने वर्षों की पुरानी चीज है, हड्डियां निकालते हैं, कहते इतने लाखों वर्ष की है। अब बाबा कहते लाखों वर्ष की कहाँ हो सकते, अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती हैं, फिर उनका दाम भी कितना रखते हैं। पुरानी चीज निकाली उसका दाम भी बहुत रख देते हैं ना, फिर उनका दाम भी कितना रख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर करता। बाबा कैसे सदगति करते हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर करते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर करता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी हैं, यही फिर सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनते हैं, वह अव्यक्त और ये व्यक्त। देखो बाबा ने पहले से ही ब्रह्मा बाबा का संपन्न स्वरूप सूक्ष्म वतन में बना ही दिया था। बाबा कहते वो अव्यक्त हैं सूक्ष्म वतन में और यहाँ साकार में व्यक्त है, तो व्यक्त को फिर अव्यक्त बनना है। तो बाबा कभी तो कहानी सुनी है ना, जब गुलजार दादी गई थी तो वहाँ वतन में देखा बाबा को, वो तो बहुत फरिश्ता स्वरूप में थे, तो आकर के बाबा को बताया तो बाबा ने कितनी बार पूछा कैसा था, बताया वो तो बहुत सुंदर फरिश्ता था। तो बाबा को पक्का हो गया था कि मुझे भी ऐसा ही फरिश्ता बनना है, तो फिर बाबा ने वैसा ही पुरुषार्थ करना शुरू किया। तो बाबा फिर धीरे धीरे अव्यक्त फरिश्ता बन गए, तो स्मृति दिवस भी आ ही रहा है ना। तो बाबा कहते वह है अव्यक्त और ये है अव्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी इनके तन में आता हूँ, जो नंबर वन पावन वह फिर नंबर वन पतित, मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर वन पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। देखो ना दुनिया कहती थी तुम लोग इसको भगवान समझते हो, बाबा कहते इन्होंने कब कहा है, बाबा ने कभी कहा थोड़ी है। बाबा कहते ये कब अपने को कहते हैं कि मैं भगवान हूँ फुलाना हूँ। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापिस जाना है तो क्या करना है, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमान छोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देता, तो क्या करना है, केवल बाबा को याद करना है, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे नॉलेज सुनेंगे वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरअहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते। बाबा वैसे भी कितने निरहंकारी थे, साकार में भी बाबा क्या करते, हर कार्य अपने हाथ से करते थे और बच्चों को भी इतना प्यार देते थे, बच्चों को भी नमस्ते करते थे। तो बाबा तो शुरू से लेकर के निरहंकारीपन का पार्ट बजाया है। शिव बाबा भी कितना निरहंकारी है, तो क्या करते हैं, कहते देखो कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला भी कितना निरअहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो, इस समय मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना। बाबा मालिक बनाते और भक्ति में जाकर के सोने का मंदिर कितना अच्छा बनाया। तो बाबा कहते इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। किस किसने मंदिर बनाए होंगे, सबने बनाए होंगे ना, सब बनाने वाले बैठे हैं, चाहे किसी ने बड़ा बनाया किसी ने छोटा बनाया, बनाया तो सही ना, सबने मंदिर में कंट्रीब्यूट भी किया होगा। तो बाबा कहते इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो। सबसे पहला पहला मंदिर सोमनाथ का बहुत बड़ा, जिसमें हीरे मोती जवाहरात कितने लगाए थे, फिर सब लूट के ले गए मुसलमान लोग। तो फिर बाबा कहते कितना बड़े मंदिर में बिठाते हो, फिर भक्ति मारे में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो। और भी मंदिरों में बिठाया बाबा को, पहला पहला मंदिर तो सोमनाथ का किया ना, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो। एक तो बड़ा मंदिर बनाया सोने हीरे, यहाँ तो क्या करेंगे, द्वापर कलयुग में गाली दिया तो कलयुग में यहाँ गाली दिया, फिर जाकर के द्वापर में सोने के मंदिर में बिठाया। सोने हीरों का मंदिर बनाते हो क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातरी करते हो। वो अभी जानते हो, उस समय थोड़ी जानते, इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या करते हैं, बाबा की सेवा का, बाबा से जो मिला उसका रिटर्न देते हैं। क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातरी करते हैं। ये सब राज समझाए, दुनिया में किसको बताओ, ये बातें समझेंगे नहीं। ये सब राज कौन समझते, बच्चे ही जानते हैं ना, तो बाबा ये सारा राज बता रहे हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते, गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कहे बैठ जाते। गंगा के कंठे पर जाओ तो क्या हाल है, चारों ही तरफ बैठे हुए पुजारी बैठे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। तो बाबा कहते गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कहे बैठ जाती हैं, माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। ये दादा ने भी खुद किया है, अब शिव बाबा बता रहे ब्रह्मा बाबा, दादा ने बहुत किया है। ब्रह्मा बाबा ने कितनी भक्ति की है, पूजा की है, पंडितों की पूजा की, गुरुओं की पूजा की, और सबकी इतना दान लुटाया, इतना धन लुटाया, बहुत कुछ किया है। तो बाबा बता रहे हैं देखो इसने भी कितनी पूजा की है, ये दादा ने भी खुद भी किया हुआ है, पुजारी नंबर वन था, पूजे भी नंबर वन और फिर पुजारी भी, बाबा कहते ये नंबर वन बनता है। तो बाबा कहते हैं इस दादा ने भी खुद भी किया है, पुजारी नंबर वन है, माता जाकर के दूध चढ़ाती हैं और फिर पूजा करती हैं, ये भी वंडर है ना। बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नरक बनता है, ये सब राज बाप बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में तो कहा नहीं आया है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि कैसे स्वर्ग बनेगा, कैसे नरक बनेगा, कौन उसको बनाता है, फिर कौन मालिक बनेंगे। बाबा कहते ये ज्ञान की बातें शास्त्रों में नहीं है, ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर, रूहानी फादर क्या वह तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके। वो है शास्त्र है स्पिरिचुअल, और वो है फिलॉसफी। तो बाबा कहते स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी फादर और तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। बाबा कहते वह फिलॉसफी के शास्त्र, यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल न सके, रूहानी नॉलेज ब्राह्मणों को मिलती है, वही दे सकते हैं। और ये तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल न सके, जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। रूहानी नॉलेज भी ब्राह्मणों को मिलती है, वही दे सकते हैं, और जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन नहीं सकते हैं, जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए, किस बात की, कि भगवान हमको पढ़ाते, श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण यहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, वो तो पढ़ा भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, एक के साथ सर्वनिष्ठा, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देते। जब कोई मिठाई बनाते हैं, कुछ करते हैं ना, तो बनाते हैं बनाते जब वो कढ़ाई का किनारा छोड़ दे तब समझते बन गई है। जब तक वो कढ़ाई को चिपकती रहती है ना, तब तक वो बनाते ही रहते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी से भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है, इसमें ही अंतिम फरिश्ता जीवन को मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानी करने वाले को भी समीप ले आता है। बाबा ने दादियों ने क्या किया, स्नेह के द्वारा संगठन को मजबूत किया, अपना बनाया, बाबा का बनाया। तो बाबा कहते हैं, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानी करने वाले को भी समीप ले आता है। फिर आज की साकाश देने की सेवा क्या करनी, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्मों की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले, वे मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो साकाश देने के लिए आज कौन सा सोमान रहे, क्या मनन चिंतन करना है वो सुनेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा के लिए सोमान क्या हो, मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। सोमान, मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। योग अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रही हूं, बाबा के समान शक्तिशाली हूं, सर्वशक्ति संपन्न बन शुभ भावना शुभ कामना से चैतन्य झाड़ को शक्तियों का दान दे रही हूं। धारणा क्या है? हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, मन संपूर्ण व्यर्थ मुक्त हो। चिंतन परम आनंद का अनुभव क्या है? अच्छा, ओम शांति। योग के बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, डबल विदेशी भाई बहनों को सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। ज्ञान समय बहुत, क्योंकि इस बार सभी डबल विदेशी भाई बहनों को ज्ञान समय में रखा है और बड़ा ग्रुप है, 300 से ऊपर संख्या है, काफी सारे आ भी चुके हैं, आज भी काफी आने वाले हैं। योग के बाद डबल विदेशी भाई बहनों को सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा।